शांति। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी पहुंचे हैं। करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करेंगे। बहनों से भी मैं निवेदन करूंगी कि फूलों से भी हमारी मीठी दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी जी का परिचय ऐसे तो हमारी दादियों के साथ ही आप इस यज्ञ की आधार स्तंभ हैं। आपने 1962 में डॉक्टर निर्मला देवी ने ये ज्ञान बॉम्बे में प्राप्त किया। आप मेडिकल डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके प्रैक्टिस कर रही थी। आपने उसके बाद भी 10 वर्ष प्रैक्टिस की, लेकिन 62 से जो आपने ईश्वरीय ज्ञान को धारण किया उसके बाद आप अनेक सेवाओं में हमारी दादियों के साथ निमित्त बने। 71 में आप विदेश यात्रा के लिए आपको बाबा ने और दादियों ने भेजा। वहां लंदन के बाद आपने कई स्थानों पर, कई ऐसे कंट्रीज पर गए जहां आधार के रूप में इस ईश्वरीय सेवाओं के बीज स्वरूप में आप निमित्त बनकर फाउंडेशन के रूप में आपने ईश्वर सेवाओं की नींव डाली, जिसके वजह से आज कई सेवा केंद्र उन कंट्रीज में आज बहुत सुंदर रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 1975 में आप पहली बार फिर ऑस्ट्रेलिया गई और 78 से लेकर आप हमारे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रहे, लेकिन वहां से आपने पूरा एशिया पैसिफिक जो सेवाएं हैं हमारी उसमें भी करीब 15 कंट्रीज से ज्यादा 130 सेंटर्स और सब सेंटर्स और 4 रिट्रीट सेंटर्स का बहुत कुशल आयोजन कर रही हैं। आप हम बहनों के लिए भी एक आधार स्तंभ है, एक रोल मॉडल है। इस समय आप जो ये सुंदर ज्ञान सरोवर में ये कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं उसकी आप डायरेक्टर हैं। दादी जी ने विशेष आपको निमंत्रण दिया और आप अभी कुछ समय से हमारे साथ मधुबन में ही ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर के रूप में यहाँ की सेवाएं आप संभाल रहे हैं। तो देश और विदेश दोनों की सेवाएं संभालने का आपका ये बहुत सुंदर रोल रहा है यज्ञ में। हमारी मीठी दादियों के साथ साथ हमारी जो कारोबार होती है, जहां निर्णय लेते हैं, उसमें भी आप उनके साथ हमेशा जिम्मेवार हैं। इन ईश्वर सेवाओं में आप एक आधार स्तंभ के रूप में हम बहनों के लिए भी एक आधार स्तंभ और रोल मॉडल के रूप में रहे हैं। हमारे साकार में भी पिताश्री और जो ईश्वरीय महावाक्य हम रोज यहाँ स्पिरिचुअल स्टडी के रूप में, मुरली के रूप में सुनते हैं, उसमें आपके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। आपको निर्मल आश्रम के रूप में बाबा हमेशा बहुत प्यार से याद करते हैं। जो भी यहाँ ईश्वरीय ज्ञान आप सुन रहे हैं उन सभी गुण और शक्तियों की आप एक रोल मॉडल हैं, आप उसको महसूस करेंगे। दीदी, आज हम आपसे इस विशेष टॉपिक पर सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति का अर्थ समझा है आप तो ने? तो यहां से ये महामंत्र ले जाना ओम शांति का, और जब आपको कोई भी गुस्सा आवे तो अपने आप को याद दिलाना ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप। जब भी अशांति आए कोई भी कारण से, याद दिलाओ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो जैसे दीपा बहन ने बताया कि दादी गुलजार सन्मुख नहीं आ सकेंगी, तो आप सबको मालूम होगा उनकी आयु 85 है और तबीयत वैसे भी थोड़ी कमजोर है, परंतु आज विशेष उनको खांसी है, इस कारण आपके सन्मुख नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि हमारी बड़ी दादी जानकी दादी 98 की है और ये गुलजार दादी 85 की है। वो लोग शुरू से 1936 से 37 से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। अच्छा, तो जीवन में सभी की इच्छा रहती है कि हम शांति का अनुभव करें, शांत रहें, सुख और शांति की सबकी चाहना है। अभी आप यहाँ आए हैं, आपने शांति का अनुभव किया, जिन्होंने किया जरा हाथ उठाना, मेजोरिटी ने किया है। कारण क्या है शांति का अनुभव करने का यहाँ? एक तो यहाँ का वातावरण मदद करता है, जिस कारण आप शांति अनुभव करते हैं। तो अभी आप लोग क्या करना, घर में जाकर भी ऐसा वातावरण बनाना ताकि आप सदैव शांति का अनुभव कर सको। ऐसे संभव है? देखो, भक्ति में हम लोग क्या करते थे, एक कमरे में या एक कोने में प्रार्थना स्थान बनाते थे, चाहे उसको पूजा स्थान कहो, मंदिर कहो, पूजा स्थान कहो, जो भी कहो, बनाते थे ना। आप में से कितनों के घर में मंदिर है, जरा हाथ उठाना। वाह, काफी घरों के अंदर है। अभी ये करना आप कि यदि वो कमरा सारा मंदिर है तो वहां जाकर सवेरे सवेरे जब भी प्रार्थना करते, पूजा करते हैं, योग भी करो। क्योंकि जितना आप योग करेंगे तो वो आपका कमरा भी जैसे यहाँ का वातावरण है ना, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो हम जब भक्ति पूजा करते हैं कभी कभी मैकेनिकल करते हैं, राम 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 जपते रहेंगे और मन काम में घूमता रहेगा, या राम राम करते करते पूजा करते करते क्या होता है, किसका फोन आया, क्या बात कर रहे हैं, कौन दरवाजा खटका रहे हैं, कौन घर में आया, सब सोच चलता रहता है। अभी आप ये काम करना कि यहाँ से आपने योगाभ्यास सीखा तो ये योगाभ्यास जो यहाँ सीखा है वो आप रोज नियमित अपने घर में करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि सवेरे जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या होगा, सारा दिन शक्ति रहेंगी, या कम से कम एक बजे तक जब तक भोजन खाएं तब तक मन में शांति रहेंगी। भोजन के टाइम फिर होगा चलो खाओ 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 ऐसे ख्याल आएगा, परंतु तब तक तो शांति रहती है। तो इसलिए ये आप अभ्यास करना कि रोज सवेरे कम से कम 10-15 मिनट ब्रेकफास्ट के पहले उठते ही साथ में ये योग करो, या तो जब पूजा करते हैं उस समय योग करो। और दूसरा ये अभ्यास करो कि जैसे यहाँ आपने देखा होगा, आप लोग करते हैं या नहीं, यहाँ हर घंटे बाहर में देखा होगा म्यूजिक बजता है, या हर 2 घंटे एक गीत बजता है, तो क्या करते हैं, सब शांत होकर खड़े रहते हैं। तो ये क्या है कि हम उस समय फिर से योग में रहकर अपनी शांति की शक्ति जमा करते हैं। जैसे आप भोजन दिन में 3 बारी करते होंगे, सवेरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, परंतु फिर क्या करते हैं बीच बीच में, कभी चाय का कप, कभी कॉफी का कप, कभी बिस्किट, कभी कुछ नाश्ता, कभी कोल्ड ड्रिंक लेकर अपने आप को एनर्जाइज करते हैं। तो इसी रीत से हम यहाँ ये करते हैं, योग का अभ्यास बीच बीच में करते रहते हैं, 1 घंटे या 2 घंटे, 1 मिनट यदि 1 घंटे करते हैं तो 2 घंटे के बाद करते हैं तो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। तो ये अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आप अपने आप में जो शांति की शक्ति है वो भरते जाएंगे। अब हम अपने आप से पूछे, हम अशांत क्यों होते हैं? तो आपने देखा होगा कि मुख्य अशांति के कारण ये है, पहला तो ये है चिंता। हर एक को चिंता रहती है, जिम्मेवारी है, तो उस जिम्मेवारी के कारण बाल बच्चों को बड़े करना है, पढ़ाने हैं, उनको ठीक ठिकाने लगाने हैं, नौकरी पर, धंधे पर, उनकी शादी करानी है, चिंता हो जाती है। धंधे में कुछ गड़बड़ी होती है, चिंता हो जाएंगे। हेल्थ में कुछ गड़बड़ी है, चिंता हो जाएंगे। और संबंध में, चाहे अपने परिवार के कोई मेंबर के संबंध में कुछ गड़बड़ी है, चिंता हो जाती है। तो चिंता का कारण क्या है? हम समझते हैं मेरी जवाबदारी है, ठीक है ना? औरों की चिंता करते हैं, क्यों समझते हैं मेरी जिम्मेवारी है। तो अब ये मेरी जिम्मेवारी को हम ईश्वर को दे सकते हैं। क्या होता है, किसी के पास धन होता है, कोई पूछता है आपको पास कितना धन है, तो लोग क्या कहेंगे? भगवान ने दिया। आपको बच्चे के कितने हैं, यदि ज्यादा नंबर होगा तो नंबर नहीं बताएंगे, कहेंगे भगवान ने जो दिया, ठीक है ना? तो जब परमात्मा ने हमें यह सब कुछ दिया है, और परमात्मा को हम क्या कहते हैं, हमारा क्या लगता है परमात्मा? पिता। जब पिता हमारे साथ हैं, तो हम क्यों अपने ऊपर जिम्मेवारी उठा लेते हैं? पिता को जिम्मेवारी दे दो, यदि सर्वशक्तिवान हमारी जिम्मेवारी ले लेवे तो हमको चिंता रहेगी? आपके बच्चों को चिंता रहती है क्या कि कब खाना मिलेगा, कब खाना पकाएंगे, कब शॉपिंग करेंगे, कब हमें पॉकेट मनी मिलेंगे? कोई चिंता नहीं करते हैं ना। वो क्या कहेंगे, अपने टाइम पर कहेंगे मम्मी खाना दो, मम्मी पॉकेट मनी दो। तो बच्चे हैं, माँ बाप से अपेक्षा करते हैं कि माँ बाप हमारी पालना करे। तो इसी रीत से परमात्मा भी तो हमारी पालना करते हैं। जब ये याद रहेगा कि ये परमात्मा हमारे पिता है और हमारी पालना करने वाले हैं, सर्वशक्तिवान है, शांति का सागर है, तो फिर हम क्यों नहीं उनके ऊपर जिम्मेवारी रख देवे? तो इसलिए मैं और मेरेपन को छोड़ने से चिंता कम होगी। नहीं तो मैं करता हूं जैसे कहते हैं तो क्या होगा, चिंता हो जाती है ना। मैं करता हूं, गुजराती में एक पहाका है कि मैं करता हूं ऐसे समझ कर जो कुत्ता है वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है, पर वो समझता है मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूं। इसी रीत से हम लोग क्या समझते हैं, हम अपने परिवार को चलाते हैं, इसलिए चिंता कर लेते हैं। तो भगवान को कहते हैं करण करावनहार, पालनहार, ये हमें अपनी बुद्धि में रखना है। फिर दूसरा मुख्य कारण चिंता का ये है कि गुस्सा आ जाता, ठीक है ना, गुस्सा आ जाता है ना। कौन है जिसको गुस्सा कभी नहीं आता है, जरा हाथ उठाना, एक भी नहीं, एक जन हाथ, दो जन ने हाथ उठाए। आपके घर वालों से पूछना भी पड़ेगा और नौकरी पर जाए उनको भी पूछना पड़ेगा, नौकरी धंधे पर, कि भाई गुस्सा करते हैं या नहीं। परंतु मान लो आज 400 में से दो जने हैं जो कहते हैं कभी गुस्सा नहीं आता है, बाकी मेजोरिटी को गुस्सा आ जाता है, अपसेट हो जाते हैं ना। चाहे बाहर से शब्द ना बोले पर मन में यदि हम अपसेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं तो क्या कहेंगे, अशांति हो जाती है। और जब हमें गुस्सा आता है हम क्या करते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं कि बच्चे को कहा है नहीं करो नहीं करो, फिर भी करता है तो गुस्सा नहीं आएगा। कई कहेंगे पेरेंट्स, एक बार ना कहा चलो, एक बार समझाया ठीक है, दोबारा समझाया तो भी चलो हमने सहन कर लिया, समझा लिया प्यार से, पर अभी सहन नहीं होता। तो चाहे बच्चे हैं, चाहे आपके अंदर काम करने वाला स्टाफ है, चाहे नौकर है, यदि आपकी बात नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो हम दोष देंगे परिस्थिति को कि इस परिस्थिति के कारण मुझे गुस्सा आया, इस व्यक्ति ने ये किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो हम दोष देते हैं व्यक्ति को या परिस्थिति को। परंतु मुख्य बात हमें समझनी है कि हमारे में सहन शक्ति कम है। यदि सहन शक्ति होती तो हम गुस्सा क्यों करते हैं? यदि हमारे में धैर्य होती तो हम गुस्सा करते? यदि हम उस व्यक्ति से प्यार करते होते तो हम गुस्सा करते? तो इन शक्तियों के कारण हमें गुस्सा आ जाता है। अब ये संस्कार, कई हैं जिनको बहुत गुस्से की आदत होती है, कोई है थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ी चिड़चिड़ापन आता है, कोई है मन ही मन में थोड़ा नाराज रहता है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि हमारे में ये शक्तियां जो कम है, चाहे सहन शक्ति, चाहे धैर्य, चाहे प्यार, चाहे समझ, क्योंकि हम समझ नहीं सकते हैं कि फलाना इनएफिशिएंट क्यों है, क्यों जिनको हमने समझाया फिर भी उसी दिन से काम नहीं करता है। तो ये हमारे अंदर या तो उनको समझने की शक्ति नहीं, या हमारे में सहन शक्ति नहीं है। तो ये शक्तियां हमको बढ़ानी है। हम ऐसे नहीं कहें कि हमारी यह पुरानी आदत है, गुस्सा करने की आदत है, चिंता करने की आदत है, ये अभी हम बहाना नहीं बताएंगे। परंतु उन शक्तियों को धारण करने की हमें पुरुषार्थ करना है। तो दो बातें हमें जीवन में बहुत मदद कर सकती है, एक तो समझदारी। तो ये जो ब्रह्मा कुमारियों का ईश्वरीय ज्ञान है हमें समझदार बनाते हैं, क्यों क्या कैसे आदि का हमें समझ मिलती है, विजडम मिलता है। और दूसरा ईश्वर की याद से, जो सर्वशक्तिवान है उसकी याद से या जिसको हम योग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, या सरल शब्दों में हम याद कहें, उससे सर्वशक्तिमान से हमें शक्ति मिल सकती है। जो भी शक्ति चाहिए, चाहे सहन करने की शक्ति है, धैर्य की शक्ति है, प्यार की शक्ति है, शांति की शक्ति है, सब शक्तियां मिल सकती है। इसलिए हमें विशेष समय निकाल करके भी अपने में योग द्वारा शक्तियां जमा करनी है, तो रिजल्ट ये होगा कि हम शांत रह सकेंगे। और ये नहीं कहना है कि ये हमारा स्वभाव है, ये सारे बहाने हैं ना, वो क्या है, हमारी कमजोरी है। स्वभाव भी बदल सकता है। हम अपने आप को देखें, सारी जीवन हमारा स्वभाव एक समान रहा है क्या? कई बच्चे चंचल होते हैं, जब एडल्ट होते हैं तो बहुत गंभीर हो जाते हैं। कई हैं जो कब कैसे हैं, कैसे हैं, संग के रंग में उनको चेंज आ जाती है आदि आदि। तो इसलिए संग के रंग में हम लोगों ने बुराई धारण की है, और बुराई धारण करना सहज है। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है कि गुस्से कैसे होना है, वो माँ बाप को या फ्रेंड्स को या टीचर को देखते हैं कैसे गुस्सा करके कंट्रोल सबको करते हैं, तो वो खुद भी गुस्सा करना सीख जाता है। परंतु अच्छी आदतें डालने में क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी को भी अच्छी आदत डालनी पड़ती है, जैसे बच्चों को हमको मैनर्स सिखानी होती है तो हमको घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, थैंक यू कहो, प्लीज कहो आदि आदि। परंतु बुरी आदत सब आ जाते हैं, और ये आदतें बदल सकती हैं। यदि अपने में दृढ़ता है कि मुझे बदलना है, तो ईश्वरीय याद से और दृढ़ता की शक्ति से हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे कैसा भी स्वभाव हो, गुस्से वाला है या चिंता करने का स्वभाव है, तो उसी परिस्थितियों में हम अपने आप को बदल सकते हैं। मुझे याद है कि हमारे पास दिल्ली के मिटियोलॉजी के डायरेक्टर क्लास में आते थे। पहले तो क्लास में आने के पहले कोर्स करने आते थे, उसके पहले कहते थे कि मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है कोर्स करने आने का। फिर टीचर बहनों ने कन्विंस किया, अच्छा चलो आप 8 बजे से 8 बजे तक काम करते हो, कम से कम 8 बजे के पहले आ जाओ क्लास करके, फिर अपने काम पर जाओ। तो वो बहुत गुस्से वाले स्वभाव के थे, और नेचुरली है जो गुस्से वाला है और डायरेक्टर है पोजीशन में, तो स्टाफ के ऊपर गुस्सा करेगा, तो स्टाफ भी बेचारे नर्वस हो जाते थे, और नर्वस होने के कारण मिस्टेक करते रहते थे। तो क्या होता था कि वो 8 बजे से लेकर 8 बजे तक काम पर रहता था। फिर इन्होंने जब कोर्स कंप्लीट किया तो वो शांत हो गए, गुस्सा कम हो गया, तो स्टाफ भी एफिशिएंटली काम करने लगा। तो रिजल्ट ये हुआ कि 8 बजे से शाम को 6 बजे वो काम पूरा करने लगा, और उसको 2 घंटा स्पेयर मिल गया, जिसमें वो अपना योगाभ्यास, ज्ञान का श्रवण, मनन, चिंतन भी कर सकते थे। तो हमने देखा है कि कई गुस्से वाले हैं शांत हो गए हैं, कई चिंताग्रस्त लोग हैं उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया क्योंकि समझ है। एक पहा का है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो क्या है कि जैसे हम लोग मानते हैं आपका भविष्य बना हुआ है, आगे के जमाने में तो बच्चा जन्मते ही उसका जन्म कुंडली बनाते थे और उसी समय ज्योतिष बता देते थे कि इसकी आयु इतनी रहेगी, शादी इतने समय करेगा, इतने बच्चे होंगे, धन प्राप्ति होंगी या नहीं, एजुकेशन प्राप्त होगा या नहीं, सब बता देते हैं। विच मीन्स कि आप अपना भाग्य लिखा कर आते हैं। तो जब आप इन बातों को ज्यादा समझेंगे कि कैसे हम अपना भाग्य बनाते हैं श्रेष्ठ कर्म द्वारा, इस कारण हमारे इस जन्म में जो कुछ है वो कर्मों के हिसाब किताब अनुसार होता है, जिसको हम दूसरे शब्द में कहेंगे ये भाग्यशाली है ये कम नसीब है, कि जिसको कभी सक्सेस नहीं मिलती, कितना भी वो एफिशिएंट है कितना भी इंटेलिजेंट है उसको सक्सेस नहीं मिलती, हम कहेंगे ये उसका कम भाग्य है। और कई भाग्यशाली होते हैं जो जहां भी बिजनेस में हाथ डालेंगे उनको सक्सेस मिलेंगे, तो हम कहेंगे ये भाग्य तकदीर वाले हैं। तो क्या है कि ये है कि जब ये बुद्धि में आएगा कि बनी बनाई बन रही है अब कुछ बननी नहीं, तो हमारे हाथ में पुरुषार्थ करने का है, प्रेजेंट हमारे हाथ में है, हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, फिर जो हमारे नसीब में होगा वो होगा। परंतु चिंता करने से क्या होगा, कहते हैं ना काजी दुबले क्यों, सारे गांव की चिंता, पर हम सारे घर की चिंता करके कई दुबले हो जाते हैं। हमने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं अच्छी रीत से खाना खाते हैं पर चिंता करते हैं तो उसका वजन ही नहीं बढ़ता है, और कई है जो निश्चिंत रहते हैं बेफिक्र रहते हैं, थोड़ा भी खाते हैं वजन बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको अपने आप को इस रीत से देखना है, समझदारी से काम करना है। अभी दूसरी अशांति होंगी कोई भी विकार है, हमने क्रोध तो लिया, अभी किसी के अंदर लोभ है या कोई सूक्ष्म लोभ का रूप है इच्छा है, तो जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, शांति नहीं मिलेगी। यदि किसी का किसी में मोह है, चाहे अपने परिवार के मेंबर में है, अपनी कोई वैभव है, कार है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, यदि उसका अपने उनमें मोह है ये मेरा है, तो क्या होगा, मेरा बच्चा बीमार होगा तो मुझे ज्यादा दुख और अशांति होंगी, चिंता हो जाएंगी। पड़ोसी के बच्चे को तो बीमार देखकर मुझे कोई चिंता नहीं होगी, एट द मोस्ट मैं जाकर पूछूंगी क्या है कैसे है ठीक है क्या इलाज करते हो क्या नहीं करते हो, परंतु मेरा बच्चा है ना तो कितनी चिंता हो जाती है। तो मोह भी एक अशांति का कारण है, बच्चा टाइम पर घर में नहीं आया, बच्चे की रिजल्ट ठीक नहीं आई तो बच्चे को दुख नहीं होगा, माँ बाप को दुख होता है, उसको पढ़ाने की चिंता हो जाती है कि उसको ठीक पढ़ावें, उसके ऊपर ठीक ध्यान देवें, ट्यूशन देवें, ये देवें। तो क्या है, जहां मुंह है वहां भी दुख अशांति हो जाएंगे, जहां ईर्ष्या है वहां भी अशांति होंगी ना, कि कोई आगे बढ़ रहा है और उनकी प्रशंसा हो रही है, मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, तो ईर्ष्या आएंगी तो भी अशांत हो जाएंगे। किसी के साथ वैर होगा तो भी अशांति हो जाएंगी। जब तक बदला नहीं लेते तब तक मन ही मन में अशांति है, जलते रहते हैं। तो इसी रीत से देखा है, कोई भी मन में विकार है तो हम अशांत और दुखी हो जाते हैं। तो अभी इन विकारों के ऊपर हम कैसे विजय पाएं, ये हमें ये ईश्वरी ज्ञान और योग की शक्ति सिखलाती है कि जितना जितना हम मेरापन छोड़ देंगे, जैसे हमने बताया जब बच्चा आता है तो कहता है भगवान ने दिया है, तो भगवान की अमानत हो गई ना, मेरा बच्चा कहा मोह पड़ गया। परंतु यदि ये याद रखे कि भगवान ने मुझे इसकी जिम्मेवारी दी है, मैं ट्रस्टी होकर इनको संभालू, तो क्या होगा, मोह नहीं होगा, न चिंता होगी, न अशांति होगी। तो इसी रीत से हमें एक तो समझदारी से काम करना है, क्यों क्या कैसे ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जानी जाननहार परमात्मा अपना तो परिचय देते हैं, उसके अलावा हमारा परिचय भी देते हैं, हम कौन हैं। तो ये सब बातें तो आपने समझी। आप में से कितने हैं जिन्होंने कोर्स नहीं किया है, जरा हाथ उठाना। हाँ ठीक है, तो जिन्होंने कोर्स नहीं किया है मैं राय दूंगी कि अपने अपने शहर में जाकर जो नजदीक का सेंटर है वहां जाकर कोर्स करें। तो उससे क्या होगा कि आपको कर्मों की गति, भाग्य क्या है, भाग्य कैसे बनता है, और एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है, योग द्वारा रिलैक्स कैसे रहना है, क्योंकि रिलैक्स होंगे स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस नहीं अशांति नहीं, नहीं तो स्ट्रेस हो जाएगा और स्ट्रेस के कारण कई बीमारियां भी हो जाएंगी। तो इसलिए जिन्होंने कोर्स नहीं किया है मैं राय दूंगी कोर्स करना। जिन्होंने कोर्स किया है परंतु कभी कभी जाते हैं उनको मैं राय दूंगी जितना हो सके रोज क्लास में जाया करो। कम से कम क्लास में ना जा सको तो कम से कम घर में योगाभ्यास करो और ये प्रवचन सुनो, क्योंकि मैं थोड़े से तो मिली हूँ, कई कहते हैं हम शिवानी को बहुत सालों से सुनते हैं, वो सुनते तो हैं, परंतु जब कोर्स करेंगे तो परमात्मा के महावाक्य रोज सुन सकते हैं। और आजकल इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि घर बैठे भी आप उनको सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, संग से रंग लगेगा, और जब रंग लगेगा औरों को देखेंगे, उनका अनुभव सुनेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में कितना परिवर्तन लाया है, कैसे ईश्वरीय मदद से ईश्वरीय ज्ञान से उन्हों के जीवन में सुख शांति प्राप्त हुई है, तो उससे क्या होगा कि आपको भी प्रेरणा मिलेंगी। हाँ, तो हम कहते हैं जैसे शरीर के लिए हम तीन बारी भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कम से कम, तो हम कहते हैं अपनी आत्मा में शक्ति बढ़ाने, क्योंकि भोजन करेंगे शरीर में शक्ति आएंगी, खून बढ़ेगा, जो भी संजो शरीर में एलिमेंट्स चाहिए, मिनरल्स विटामिन्स सब मिल सकते हैं, इसलिए हम भोजन जरूर करते हैं। परंतु उसके साथ साथ मन के लिए या आत्मिक शुद्धि के लिए, आत्मिक परिवर्तन के लिए भी ये योग का बहुत आवश्यकता है, ज्ञान के भोजन की भी आवश्यकता है। तो इसलिए जितना आप उसका अभ्यास करेंगे ना, क्योंकि एक बार सुनते हैं अच्छा लगेगा, यहाँ आए हैं अच्छा लगेगा, फिर घर में जाकर जैसे कि वैसे बन जाएंगे तो क्या होगा, इतना फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसका आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना अपने को रिमाइंड करेंगे, क्योंकि क्या है कि ये चार दिन जो आपने सुना है फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, इसलिए रोज रिवाइज करना पड़ता है, रोज रिमाइंड करना पड़ता है अपने आप को, रोज अपने को चेक करना पड़ता है कि हम आज क्यों अशांत हो गए, क्या करें जिससे वो अशांति ना रहे हमारे में। तो अपने आप को चेक करके अपने आप को परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन का जो फाउंडेशन है वो है रियलाइजेशन। यदि हम रियलाइज करते हैं कि मेरे में क्या कमी है तो हम उसको भर सकते हैं। यदि हमको मालूम ही नहीं कि हमारे में क्या कमी है, हम दूसरों को ही दोष देते रहे कि इसके कारण गुस्सा आया, पर हमको समझना चाहिए ना कि ये मेरी सहन शक्ति की कमी है जिसलिए मुझे गुस्सा आया। तो ये समझदारी और रियलाइजेशन से और अपने थोड़े पुरुषार्थ से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कई प्रकार के हमारे सामने परिस्थितियां आएंगी। हाँ, उन परिस्थितियों में भी हम कैसे अपनी अवस्था शांतिमय बना के रखें, जिसको गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञा अवस्था, कि सुखे दुखे समय कृत्वा, के सुख में दुख में समान, गर्मी सर्दी में समान, मान अपमान में समान, ऐसी परिस्थिति बनानी है जिसको कहेंगे एक रस अवस्था। उसके लिए ये ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शक्ति बहुत जरूरी है। तो आपने समझा कि हम आत्मा है, आपने समझा कि हमारा पिता परमात्मा है जो शांति का सागर है। अभी मेरा पिता शांति का सागर हो, मैं अशांत कैसे हो सकती हूँ? इसका मतलब कि मेरा पिता से कनेक्शन नहीं है ना। यदि मेरा पिता, जैसे मेरा कोई पिता है, उसकी ग्रोसरी की शॉप है, और मैं कहूँ कि मेरे घर में अनाज नहीं है, तो कोई क्या समझेगा कि बाप के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। इसी रीत से परमात्मा शांति का सागर है। यदि मैं अशांत हो जाऊं, इसका मतलब मेरा कनेक्शन परमात्मा से नहीं है। और ये भी आपने समझा होगा कि हम असल में शांति धाम के वासी थे, परम धाम के वासी, शांति धाम के वासी थे, तो हम शांति धाम के वासी, शांति के सागर के संतान, हम आत्मा शांत स्वरूप है। यदि ये बातें हमें सदैव स्मृति में रहे तो हम अशांत कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए हमें इन बातों को समझकर और धारण करना है, क्योंकि हमको समझदारी तो बहुतों ने दी। मॉरल एजुकेशन में हमको सबने कहा गुस्सा करना अच्छा नहीं है। जानते हैं मेडिकली के टेंशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना अच्छा नहीं है, जानते हैं, इससे हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। फिर भी क्या हो जाता है हमारे से, ये हमारी कमजोरी है, ये रियलाइज करना है। और कमजोरी को भरने के लिए हमें उपाय करना है, और मेडिटेशन ये उसका सॉल्यूशन है। इसलिए जितना आप मेडिटेशन का अभ्यास करते जाएंगे और ईश्वरीय विद्या का भी अभ्यास करते जाएंगे, आप देखेंगे कि न सिर्फ आप में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में, आपके जो भी साथी है नौकरी धंधे पर, सब में परिवर्तन आएगा। अभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। अंत में मैं ये कहेंगी क्योंकि मैंने देखा है मेजोरिटी लोग ऐसे कहेंगे हमको टाइम नहीं मिलता है, करना तो चाहते हैं टाइम नहीं, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिलेगा नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि बिजी रखने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, जो नौकरी धंधा करते हैं वो तो बिजी है ये, जो नौकरी धंधा नहीं करते हैं और नौकरी ढूंढते हैं वो भी बिजी है। और आजकल तो क्या है, नौकरी धंधे में ऐसे हैं कि इफ यू वांट टू वर्क, वर्क फॉर 10-12 आवर्स, अदरवाइज यू डोंट वर्क एट ऑल, नो जॉब। मतलब डिमांडिंग है सारा, जॉब डिमांडिंग, फैमिली डिमांडिंग, डिमांड तो सबकी है ही, परंतु हमें अपनी उन्नति के लिए समय जरूर निकालना है। क्योंकि क्या है कि हम कई बार देखते हैं लोगों को खाने का टाइम है, टेलीविजन देखने का टाइम है, सोशल गैदरिंग अटेंड करने का टाइम है, क्योंकि सोशल फंक्शन है, नहीं जाएंगे तो भी कोई उलहना देंगे क्यों नहीं आए, आप हमारे फंक्शन में नहीं आए, अभी आपके फंक्शन में भी हम नहीं आएंगे, कंप्लेन करने वाले बहुत होते हैं। सबके लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन अपनी उन्नति के लिए हम कहेंगे टाइम नहीं है। तो ये है कि जब हम उसकी वैल्यू समझेंगे कि हम साथ में क्या ले जाएंगे, बाल बच्चे ले जाएंगे, प्रॉपर्टी ले जाएंगे, मकान ले जाएंगे, धन ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, साथ में हम अपने संस्कार ले जाएंगे और कर्मों का खाता ले जाएंगे। इसलिए अपने संस्कारों को बदलने के लिए हमें जरूर टाइम निकालना है, अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, परमानेंट सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें टाइम जरूर निकालना है। कई बार हम लोग है वो ब्रह्मा बाबा को कहते थे कि बाबा हमको आज टाइम नहीं मिला अपना नित्य अभ्यास करने की, योग अभ्यास करने की। तो बाबा पूछते थे, अच्छा भोजन के लिए टाइम मिला? यदि भोजन के लिए हम निकाल सकते हैं 15-20 मिनट, तो क्या अपनी उन्नति के लिए नहीं निकाल सकते हैं? आत्मा के भोजन के लिए, मन के भोजन के लिए नहीं निकाल सकते? तो इसलिए चाहे कितनी भी बिजी लाइफ हो, लेकिन अपना यदि नियम बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी ने हमको अशांति के कारण और उसके सुंदर निवारण हमको सुनाए, और हम दीदी ये ध्यान में रखेंगे कि शांति का शक्ति का अनुभव करने के लिए जरूर अभी हम क्या करेंगे, समय जरूर निकाल करके वापस जाने के बाद सेंटर पर अवश्य जाएंगे और शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। दीदी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।